शब्दार्थ यथा जिस प्रकार तरल वृक्ष की मूल जड़ निषेचने न सिंचने से तृप्यन्ते संतुष्ट हो जाते हैं तत् इसके स्कंध तना भुज शाखाएं उपशाखा टहनिया प्राण प्राणवायु उपहारात भोजन करने से च तथा यथा जिस तरह इंद्रियाणाम इंद्रियों का तथा एव उसी तरह सर्व सभी देवताओं की अर्हणम पूजा अच्युत श्री भगवान की इज्या पूजा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जिस तरह वृक्ष की जड़ों में पानी देने से तना शाखाएं तथा टहनियां शक्ति प्राप्त करती हैं और जिस तरह भोजन करने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं उसी प्रकार भक्ति द्वारा श्री भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। दोहराइए, जिस तरह वृक्ष की जड़ों में पानी देने से तना शाखाएं तथा टहनियां शक्ति प्राप्त करती हैं, जिस तरह भोजन करने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं उसी प्रकार भक्ति द्वारा श्री भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तात्पर्य, कभी कभी लोग पूछते हैं कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन देवताओं को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन क्यों करता है। इसका उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है। वृक्ष की जड़ को सींचने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भगवद गीता के 15 अध्याय का श्लोक में कहा जाता है, ऊर्ध मूलम अध शाखाम, यह दृश्य जगत नीचे की ओर विस्तृत है, इसका मूल श्री भगवान है। जैसा कि स्वयं भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय के 8 श्लोक में पुष्टि करते हैं, अहम सर्वस्व प्रभव, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक संसारों का स्रोत हूँ। श्री कृष्ण सभी वस्तुओं के मूल हैं, अतः श्री कृष्ण सेवा का अर्थ है सभी देवताओं की स्वतः सेवा हो जाना। कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि सफलता के लिए कर्म तथा ज्ञान में भक्ति के मिश्रण की और कभी कभी भक्ति में कर्म तथा ज्ञान के मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में जैसा कि शिलरूप गोस्वामी ने कहा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात् अनावृतम, शुद्ध भक्ति को कर्म तथा ज्ञान के स्पर्श से दूषित नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यों मानवतावादी कार्यों आदि में व्यस्त है, किंतु लोग यह क्यों नहीं समझते कि जब तक श्री भगवान श्री कृष्ण को इन सारे कार्यों का केंद्र बिंदु नहीं बनाया जाता, एक कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकते। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि श्री कृष्ण तथा उनके शरीर के विभिन्न अंगों की पूजा करने में क्या हानि है, तो इसका उत्तर भी इस श्लोक में प्राप्त है। बात यह है कि भोजन मुख में देने से सारी इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाती हैं। यदि कोई अपने नेत्रों या कानों में अलग से भोजन दे तो उसका परिणाम बुरा होगा। केवल उदर को भोजन देकर हम समस्त इंद्रियों को तुष्ट कर सकते हैं। प्रत्येक इंद्रिय की अलग अलग सेवा कर पाना न तो आवश्यक है न संभव है। निष्कर्ष यह है कि केवल कृष्ण सेवा से सब कुछ पूरा हो जाता है। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य में 22-62 में पुष्टि की गई है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। यदि मनुष्य भगवान की भक्ति में लगा रहे तो सारे कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्त्यन्ति तत्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्या। जिस तरह वृक्ष की जड़ों में पानी देने से तना शाखाएं तथा टहनियां शक्ति प्राप्त करती हैं, जिस तरह भोजन करने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा श्री भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि श्री भगवान की ही क्यों पूजा की जाए, अन्य देवताओं की पूजा क्यों न की जाए। देवता भी भगवान के अंग हैं, तंग की पूजा करने में क्या हर्ज है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के मूल हैं और देवता उनके अंग उपांग हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे वृक्ष के शाखा प्रशाखा टहनियां फल फूल ये सब तृप्त हो जाते हैं जब वृक्ष के जड़ को सिंचित किया जाता है। यथा तरोर मूल निषेचने न, यथा जिस तरह वृक्ष के मूल को सींचा जाता है, मूल मतलब जड़ को, यथा तरोर मूल निषेचने न, वृक्ष के जड़ में सिंचन करने से तृप्त्यन्त तत्कंध भुजोपशाखा, उस वृक्ष के शाखाएं उप शाखाएं तथा अनेक टहनियां हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, सब तृप्त हो जाते हैं, तृप्त्यन्ति। फिर एक उदाहरण देते हैं कि प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां, जैसे शरीर को संतुष्ट करने के लिए भोजन मुख में दिया जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं लेकिन भोजन मुख में दिया जाता है, इसको मुख कहा जाता है। मुख मतलब जो प्रधान है, और मुख से वो ग्रास अमाशय में जाता है और अमाशय के द्वारा सारे इंद्रियों को शक्ति प्राप्त होता है। अर्थात भोजन जो है पेट में दिया जाता है मुख के माध्यम से, और पेट से सारे अंगों को शक्ति प्राप्त होता है। प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां, तो कोई तर्क कर सकता है कि क्यों भोजन को हम क्यों पेट में देंगे, हम अन्य अंगों में दे सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई यह तर्क दे सकता है कि भोजन कान को भी दे सकते हैं, आंख को भी दे सकते हैं, अन्य अंगों को भी भोजन दे सकते हैं, वो भोजन को भोग नहीं सकते हैं। भोजन को भोगने की शक्ति केवल पेट को है, पेट ही भोजन को भोग करके सारे अंगों को शक्ति देता है। अगर कोई राइस दाल सब्जी चपाती सिर में कई दिनों तक बांध कर घूमता रहे, या पीठ में राबड़ी है रसमलाई है उसको बांध करके रखे, तो कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि उसके अंग जो है दूषित हो जाते हैं। कोई अचार है आम का अचार है मिर्ची का अचार है आंख में दे दे, हलवा को कान में भर दे, तो उसे अंग जो है दूषित हो जाते हैं और अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, वो अंग ही काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो विधि नहीं है। अगर समस्त अंगों को शक्ति देना है तो भोजन को पेट में दिया जाता है, पेट के माध्यम से सारे अंगों को शक्ति दिया जाता है। और इसके विपरीत अगर कोई करता है तो सारे अंग शिथिल हो जाते हैं। अगर भोजन मुख में न दे करके अन्यत्र भोजन दिया जाए तो सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, कोई अंग कार्य करते नहीं है। तो शरीर में पेट जो है भोगता है, वृक्ष का जड़ भोगता है, वृक्ष का जो जड़ है वो पृथ्वी से खनिज है, लवण है, अनेक रासायनिक पदार्थ हैं, जल को शोषण करके सारे वृक्ष के अवयवों को प्राप्त कराता है। श्री राधा रास बिहारी जी की। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, निताई गौर सुंदर की। तो वृक्ष के जड़ को अगर कोई काट दे, वृक्ष के जड़ को आप काट दीजिए, तो वृक्ष क्या होता है, सूख जाता है। वृक्ष की टहनियों को आप काट देते हैं, फिर भी वृक्ष जो है आगे चलकर टहनियां आ जाती हैं। लेकिन वृक्ष के जड़ को अगर कोई काट दे, वृक्ष से अलग कर दे, तो वृक्ष सूख जाता है। कोई भी पौधा है, उसके जड़ को पौधे से अलग कर दीजिए, फिर वृक्ष को, फिर पौधे को आरोपित कीजिए, तो पौधा नहीं लगता है, सूख जाता है, क्योंकि मूल से अलग हो गया है। अब मूल से जब युक्त रहता है तो हरा भरा हो जाता है, जैसे ही जल और भूमि का स्पर्श प्राप्त करता है पुनः हरा भरा हो जाता है। जैसे वृक्ष है, इसके शाखाओं को कभी कभी काट दिया जाता है। अब देखें, इसके वृक्ष के अनेक शाखाओं को काट दिया गया, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन जड़ से काट दीजिए तो बड़ा हो सकता है, जड़ को काटिए तो बड़ा नहीं होगा, सूख जाएगा, पूरा अंग सूख जाता है, क्योंकि उसका जड़ से संपर्क जो है टूट गया है। उसी तरह समस्त सृष्टि के जड़ जो है भगवान है, और जब जड़ से संबंध रहता है तो सृष्टि हरी भरी होती है, और जड़ से अलग करने के बाद सूख जाता है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्त्यन्ति, तृप्त हो जाते हैं मूल को अगर कोई सिंचन करता है तो। एक और उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, श्री भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभव मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वित। अहम सर्वस्व प्रभव, मैं सबको उत्पन्न करता हूं। मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वित। और एक जगह और भगवान कहते हैं, भोक्तारम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान भोक्तारम है, किसके भोक्ता हैं, समस्त यज्ञों के और तपस्याओं के। भोक्तारम जग तपसाम सर्वलोक और समस्त लोकों के महाईश्वर हैं, महेश्वर हैं। शिव जी को भी महेश्वर कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़े महाईश्वर समस्त ब्रह्मांड के शिव जी इस ब्रह्मांड के महेश हैं, महाईश्वर हैं, महादेव हैं, लेकिन समस्त ब्रह्मांड के नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वलोक ही, समस्त लोकों के मैं महाईश्वर हूं, अनंत ब्रह्मांड के वो ईश्वर हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक। इसलिए वो समस्त यज्ञों और तपस्याओं के भोक्ता हैं, सबके मूल हैं। और मूल की कोई उपासना करता है, कोई पूजा करता है, तो उसके शाखाएं प्रशाखाएं अंग सब हरे भरे हो जाते हैं, सब तृप्त हो जाते हैं। तृप्त्यन्ति तत्कंद भुजोपशाखा, अनेक दर्शन चिंतक और दर्शक कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने से भगवान को ही प्राप्त होता है। भगवान गीता में भी कहते हैं कि देवताओं की पूजा करना भी, वो भी हमारी ही पूजा है, मुझे ही प्राप्त होता है, लेकिन वो अविधि पूर्वकम है। विधि क्या है कि भगवान की पूजा की जाए। अगर कोई वृक्ष के जड़ में पानी नहीं देता है, शाखाओं को, टहनियों को, पत्तियों को सींचता है, तो विधि नहीं है कि वृक्ष के हर पत्ती पत्ती को पानी देना संभव नहीं है। अगर कोई पत्ती पत्ती में पानी देने का प्रयास करता है तो ये बहुत कठिन श्रम है। और लाभ क्या है, श्रम ये वही केवल केवल श्रम है, उसे कोई लाभ नहीं हो पाता है। वास्तव में पत्ती पर पानी डालना और अंत में वो पानी फिर कहाँ आता है, फिर पृथ्वी के जड़ में, वृक्ष के जड़ में ही आ जाता है, अंततः वो आता है, लेकिन देर से आता है, उसका लाभ देर से मिलता है। कोई कहे कि हम जड़ में पानी नहीं देंगे, हम पत्ती के ऊपर से देंगे, तो पत्ती से भी अगर पानी गिरेगा तो कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा, नीचे आकर फिर, लेकिन उसमें श्रम ज्यादा होता है। जैसे कोई इस पत्ती के ऊपर चढ़ने का प्रयास करे तो गिर भी सकता है, और वृक्ष के हर शाखाओं के ऊपर जाने का प्रयास करे तो गिर भी सकता है, खतरा भी है, मूल खतरा भी है, परिश्रम भी ज्यादा है और समय की भी बर्बादी है। इसलिए विधि क्या है कि जड़ में पानी दे दिया जाए। जड़ में पानी देना सरल है और उपयुक्त है। इस तरह से भगवान की पूजा करना सरल है और संभव है और यथा योग्य है और शास्त्र विधि के अनुकूल है। बहुत सारे लोग, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लोग कहते हैं, कोई यह प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण तथा उनके शरीर के विभिन्न अंगों की पूजा करने में क्या क्या हानि है, तो इसका उत्तर भी यह श्लोक में प्राप्त होता है। जैसे भोजन को हम मुख में देते हैं और सारी इंद्रियों को स्वतः मिल जाती है, यदि कोई अपने नेत्रों या कानों को अलग से भोजन दे तो उसका परिणाम बुरा होगा। जैसे वृक्ष के पत्तियों पर जा जाकर पानी देने का प्रयास करे तो उसका परिणाम क्या होगा, गिर सकता है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जैसे कोई बहुत परिश्रम किया, पूरा पहाड़ खोदाई किया और मिला क्या, एक चूहिया मिली। जैसे कोई खदान में जाता है, खोदाई करता है सोना के लिए, या कोई मुख्य धातु के लिए पहाड़ की खोदाई करता है, या पहाड़ से जो मणि निकलता है तो मणि के लिए लोग भी पर्वत की खुदाई करते हैं, लेकिन खुदाई करे और मिला क्या, एक चूहिया मिले। तो उसी तरह भगवान की भक्ति को डायरेक्ट विधि से या शास्त्र विधि से न करके मनमाना विधि से अगर कोई करता है तो उसमें श्रम केवल होता है, लाभ कोई नहीं होता है। तो भगवान गीता में भी इसकी पुष्टि करते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न च सिद्धि ममापनोतिम न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधि, शास्त्र विधि क्या है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान कहते मामेकम, भगवान द्वेकम त्रिकम चतुर्थकम नहीं कहते, मामेकम। अर्जुन को कहते मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन का प्रश्न था कि मैं आपकी क्यों पूजा करूं, आप तो हमारे समवयस्क हैं, आप हमारे साथ ही पढ़ाई किए हैं, बड़े हुए हैं, मैं क्यों आपको आपकी पूजा करूं। तो भगवान ने कहा कि देखो, सारे देवता मेरी पूजा करते हैं, उन्होंने विराट रूप का दर्शन कराया, विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराया, जिसमें सारे देवता भगवान की पूजा कर रहे थे। पश्यामि देवा स्तव देव देह, भगवान की उस विराट देह में सब अर्जुन देख रहे थे। पश्यामि देवा स्तव देव देह सर्वास तथा भूत विशेष संघान, सारे जीव यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि के सबसे उत्कृष्ट जीव हैं, और अधोतल में गर्भोदक साई विष्णु, अनेक रुद्र वसु यक्ष किन्नर गंधर्व पितृ देवता, सारे लोग भगवान की पूजा कर रहे थे। बड़े बड़े नाग वासुकी नाग भी उनकी पूजा कर रहे थे। पश्यामि देवास्तव देव देह सर्वास तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड मीशम कमला सनस्तम, जो कमल के आसन पर ब्रह्मा जी हैं वो भी भगवान की स्तुति कर रहे थे। और उस विराट शरीर में उनके नेत्र कौन है तो सूर्य चंद्रमा, अनेक बाहु दर्भक्त्र नेत्रम, अनेक भुजाएं हैं, अनेक पेट है, अनेक आंख है, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम। भगवान विराट के देह में अनेक नेत्र हैं, अनेक भुजाएं हैं, अनेक पेट है, उनका कोई पारावार नहीं है। और बड़े बड़े नेत्र हैं सूर्य और चंद्रमा जैसे, असंख्य नेत्र भी हैं, अनेक वक्त्रम अनेक मुख हैं, भगवान को कोई किधर से भी खिलाए वो खा लेते हैं, कहीं से भी रहे भगवान देख सके, उनके अनेक नेत्र हैं और कितना भी भोग लगाइए भगवान खा जाते हैं, भगवान के असंख्य पेट हैं, अनेक बाहु उधर कितना भी भोग लगाइए पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड निगल जाते हैं, भगवान अनंत ब्रह्मांड को भी ग्रास कर लेते हैं। जब प्रलय होता है तो प्रलय में अनंत ब्रह्मांड को भगवान श्वास के रूप में निगल जाते हैं और सृष्टि में समस्त ब्रह्मांड को अपने श्वास वायु से प्रकट कर देते हैं। ऐसे कि निवसित काल मथावलंब्य जीवन तिलोम बिलजा जगदंड नाथ, विष्णु महान सही अस्य कला विशेषो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। सारी भौतिक सृष्टि श्री भगवान के शरीर के उद्भूत है और प्रलय के समय पुनः उन्हीं में प्रविष्ट हो जाती है। यह सृष्टि यथा तथा प्रलय की क्रिया महाविष्णु के श्वास लेने से संभव है। भगवान श्वास से ही सृष्टि कर देते हैं, उनके श्वास से अनेक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और श्वास लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं श्वास प्रश्वास में। भगवान के लिए कोई भी चीज संभव असंभव नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि अनंत हैं, उनके पास जो कुछ भी है अनंत है। जैसे सूर्य जो है, आगे के अगले श्लोक में वर्णन है कि सूर्य जो है सूर्य के कारण वर्षा होती है, सूर्य से बादल बनता है, क्षारम जलम बारी मुचह पिबंती तदेव कृत्वा मधुरम बमंती। सूर्य जो है खारे जल को वाष्पित करते हैं, क्षारम जलम बारी मुचह पिबंती पी जाते हैं और फिर क्या करते हैं मधुरम बमंती और मधुर जल के रूप में वर्षा करते हैं। सूर्य वर्षा के कारण है और फिर वही वर्षा के पानी को फिर शोषित कर लेते हैं, वर्षा भी करते हैं वर्षा ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में उसको सुखा लेते हैं, कारण वही है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के उद्भव के भी कारण है और प्रलय के भी कारण है, उत्पत्ति के भी कारण है और प्रलय के भी कारण है। जब वर्षा सूर्य के द्वारा होता है और फिर वर्षा के पानी को सूर्य सुखा लेते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आश्रय तत्व आश्रय हैं, सारे जीव प्रलय के समय उनके श्वास प्रश्वास के रूप में अंदर बाहर आते रहते हैं। जैसे सारी नदियां यथा नदी नाम बहुवम बुबेगा, सारे नदियों का वेग कहां जाता है समुद्र में, जितनी भी नदियां हैं बहती हैं और कहां जाती हैं अंत में समुद्र में जाती, समुद्र में वा समुद्र में जाकर वो मिल जाती हैं और फिर नदियों में पानी भी समुद्र से ही आता है। नदी में जो पानी आता है कहां से आता है समुद्र से आता है, समुद्र के ही पानी को सूर्य ऊपर ले जाते हैं फिर वर्षा में फिर ले जाते हैं। तो सृष्टि का जो चक्र है आवागमन, जैसे नदियों का प्रवाह समुद्र से ही आता है और फिर समुद्र में मिल जाता है, उसी तरह अनंत ब्रह्मांड के जीव भगवान से ही आते हैं, महाविष्णु से ही आते हैं उनके श्वास प्रश्वास से और फिर उनमें ही आश्रय ले लेते हैं। आश्रय लेने का अर्थ ये नहीं कि उसमें ब्रह्मलीन हो जाते हैं, वहां भी उनकी सत्ता रहती है। भगवान महाविष्णु में प्रविष्ट होना मतलब नहीं कि भगवानमय हो जाना, नहीं, वहां भी पृथक सत्ता रहती है। जैसे सूर्य से अनंत किरणें निकलती हैं, सूर्य से अनंत किरणें निकलती हैं, प्रकाश का पुंज आता है और सूर्य जब अस्त हो जाता है तो सारी किरणें समेट लेता है। सूर्य जैसे अस्ताचल में जाता है अपने सारे प्रकाश को अपने में लेकर चला जाता है। सूर्य और सूर्य का प्रकाश और सूर्य लोक तीनों अलग अलग हैं। एक सूर्य लोक है, सूर्य का बहिरंग प्रकाश है और उस प्रकाश से अनेक त्रिश्रेणु छोटी छोटी किरणें निकलती हैं। जैसे अग्नि का विकास, अग्नि का विशाल पुंज और उस अग्नि से अनेक छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं। तो सूर्य से ऐसे अनंत किरणें निकलती हैं और फिर सूर्य उनको अपने में समेट लेता है। तो जो लोग यह जानते हैं कि समस्त वस्तुओं के, समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के मूल भगवान श्री कृष्ण हैं, तो ऐसे लोग भगवान के शरण में जाते हैं और भगवान का शरण ग्रहण करके उनकी पूजा करते हैं, जिससे सारे देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय की अलग अलग सेवा कर पाना न तो आवश्यक है न संभव ही है। प्रत्येक इंद्रिय की अलग अलग सेवा कर पाना न तो आवश्यक है न संभव ही है। निष्कर्ष यह है कि केवल कृष्ण सेवा से सब कुछ पूरा हो जाता है। जैसा चैतन्य चरितामृत में पुष्टि की गई है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। यदि मनुष्य श्री कृष्ण की सेवा करे तो सारे कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं, अर्थात सारे देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। फिर श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बहुत सारे लोग कल्याणकारी कार्य करते हैं, मानवतावादी कार्य करते हैं, तो बोलते हैं दरिद्र ही नारायण है, दरिद्र की सेवा करना नारायण की सेवा है। लोग बोलते हैं, मानवतावादी लोग बोलते हैं कि दरिद्र की सेवा करो, लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर कोई चीज किया जाता है तो वो कार्य सफल होता है, अन्यथा वो कार्य सफल नहीं होता है। यह मान करके कोई करे कि दरिद्र भी, ये भी भगवान के अंश हैं, सारे जीव भगवान के अंश हैं और सबके आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उनका अंश मानकर कोई भगवान की भक्ति में उनको लगाता है या भगवान की भक्ति से जोड़ता है या भगवत प्रसाद उनको देता है, तो वो वास्तविक कल्याणकारी मार्ग है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाने से, भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाने से मतलब जो कुछ भी किया जाए श्री कृष्ण को केंद्र करके, कि श्री कृष्ण सबके भोक्ता हैं। मतलब दरिद्र की भी सेवा करनी है तो कोई दरिद्र को ही नारायण मान लेता है तो उल्टा हो जाता है, लेकिन दरिद्र में भी अगर भगवान को देखता है, परमात्मा को देखता है कि सब प्राणियों में परमात्मा है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब भगवान के ही द्वारा बनाए गए हैं और सब में भगवान है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनम। समदर्शी क्या है, सब में भगवान के अंश को देखना, उसको भगवान न मानना, भगवान मान लेना वो विषम दृष्टि है, लेकिन सम दृष्टि है उसमें यह देखना कि इसमें भी भगवान का अंश है, जीव भगवान का अंश है, ईश्वर अंश है, जीव भी ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव भी अविनाशी है, चैतन्य है और अमल है, आत्मा में कोई मल नहीं है, लेकिन मल के सांसारिक संसर्ग से, भौतिक इंद्रियों के, भौतिक गुणों के संसर्ग में आने से ऐसा उसे प्रतीत होता है। जैसे सूर्य जो है आकाश में स्थिर रहता है लेकिन पानी में उसका प्रतिबिंब हिलता है, पानी जब हिलता है तो सूर्य का प्रतिबिंब भी हिलता नजर आता है, लेकिन वास्तव में सूर्य नहीं हिलता है, सूरज तो स्थिर है, उसका प्रतिबिंब पानी के हिलने से ऐसा प्रतीत होता है। उसी तरह आत्मा इस शरीर में भी अमल है, चैतन्य है, अविनाशी है, लेकिन शरीर के धर्म के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा दुखी हो रहा है, आत्मा जन्म ले रहा है, आत्मा मर रहा है, आत्मा में मान हानि सुख दुख जय पराजय का ऐसा बोध होता है। जैसे सूर्य स्थिर होते हुए भी पानी के संसर्ग में प्रतिबिंब पानी के हिलने के साथ वो भी हिलता है, लेकिन वास्तव में सूर्य नहीं हिलता है। लेकिन इसका बोध क्यों होता है कि हमें शरीर में ही अपना अस्तित्व मान बैठते हैं। जब कोई बुद्धि से भक्ति योग से जब उसको समझने का प्रयास करता है तो समझता है कि नहीं, मैं दुखी नहीं हूं। शरीर के द्वारा हम दुखी होने का अनुभव करते हैं, शरीर के द्वारा ही जीव सुख दुख का अनुभव करता है। वास्तव में शरीर ही जन्म लेता है, शरीर ही मरता है, शरीर ही बड़ा होता है, शरीर ही बूढ़ा होता है, शरीर ही मान अपमान सुख दुख से प्रभावित होता है। लेकिन उसमें आत्मा है तो उसको भी अनुभव होता है, वो भी हिलता नजर आता है। लेकिन सूर्य की तरह वास्तव में वो प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित होते हुए भी प्रभावित नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण को यह मान ले कि जीव भगवान का अंश है, और चाहे जिसकी भी सेवा करता है, चाहे दरिद्र की सेवा करता है, तो अंश और अंशी का जब संबंध हो जान जाता है तो अंशी से संबंध करके अंश की सेवा करता है, भगवान से संबंधित तो कार्य करता है और उस कार्य से लोगों को लाभ पहुंचाता है। इसलिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से अन्य सारे कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। ये सुनने में अटपटा लगता है कि कृष्ण भक्ति करने से सारे कार्य कैसे हो सकते हैं। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, ये सब छोड़कर केवल कृष्ण भक्ति करे तो सब काम कैसे संपन्न हो सकते हैं। कृष्ण भक्ति करने से सब कार्य स्वतः संपन्न हो जाएंगे, स्वतः अपने आप ही कैसे हो सकता है। रूपा जी कहते हैं कि हो सकता है। कृष्ण भक्ति करने का अर्थ यह नहीं है कि सब छोड़ देना। जैसे अर्जुन भगवान के भक्त थे लेकिन वो भी युद्ध किए, लेकिन कृष्ण भक्ति से युक्त होकर युद्ध किए। अगर कोई कृष्ण भक्ति से युक्त होकर के कार्य करता है तो वही कार्य जो है भक्ति हो जाता है। चाहे वो बिल्डिंग बना रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है, कृष्ण भक्ति में कर रहा है तो वो स्वतः अपने आप कृष्ण भक्ति भी स्वतः हो जाता है और कार्य भी स्वतः हो जाता है। वो कार्य ही भक्ति योग हो जाता है, कर्म योग हो जाता है। कर्म योग और ज्ञान योग अब कृष्ण को केंद्र में रखकर किया जाता है, वही भक्ति योग है। भक्ति योग को ही कर्म योग भी कहा गया है और कर्म योग को भक्ति योग भी कहा गया। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो उसको अलग नहीं मानते हैं। पृथक बाला न प्रवदन्ति पंडिता। कर्म योग और भक्ति योग को जो विद्वान लोग हैं वो अलग नहीं मानते हैं, क्यों? कर्म का जो पर्योषण है भक्ति में होता है। जैसे अर्जुन युद्ध किए तो भक्ति है। भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो कृष्ण भक्ति सर्व कर्म मूल है और कृष्ण भक्ति में सारे कर्मों का समावेशन है, सारे कर्म उसमें संपादित किए जा सकते हैं। संसार के जितने भी कार्य हैं कृष्ण भक्ति को संपन्न करने के लिए ही किए जाते हैं। कृष्ण भक्ति से अलग करके जो कार्य किया जाता है वो बंधन हो जाता है। तो जितने भी कार्य हैं संसार के अगर कृष्ण भक्ति को संपन्न करने के लिए किए जाते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चित्रकार है, पेंटर है, बहुत बड़ा कोई आर्किटेक्टर है, बहुत बड़ा कोई संगीतकार है। अगर कृष्ण भक्ति से जुड़ जाता है तो उसके सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। सारे कार्यों का जो मूल है, जो फल है, सर्व कर्म कृत जो लाभ होता है वो प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भगवान मूल है, यथा तरो मूल निश्चय चने न। तो मूल से युक्त होना और मूल को, मूल की सेवा करना, यही इस श्लोक का सारांश है कि हमें मूल को पकड़ना चाहिए। अगर पत्ती को हम पकड़ेंगे तो पत्ती को पकड़ने का कोई लाभ नहीं है। पेड़ में असंख्य पत्तियां होती हैं और पत्तियां अपने आप गिर जाती हैं पतझड़ में, फिर नई पत्तियां आती हैं। या पत्ती को ही लेकर कोई कहे मैं पेड़ को लाया हूं, मैं एक पेड़ लाया हूं, तो कहे ये मूर्ख है। हम एक पेड़ के एक पत्ती को ले आए हैं और ऐसे पेड़ में असंख्य पत्तियां आती हैं, जैसे बसंत ऋतु में नई पत्तियां आ जाती हैं और पतझड़ में सारी पत्तियां गिर जाती हैं। तो ऐसे मूल से संबंध होने से वृक्ष में अनेक प्रकार के, अनेक ऋतुओं में हर साल नए नए फल फूल आते रहते हैं, लेकिन उसका संबंध जब टूट जाता है तो कुछ नहीं आता, बल्कि उसका सारा अंग सूख जाता है। कनेक्शन जैसे ही छूट जाता है, वो पत्ती में न फूल आता है, न फल आता है, न पत्ती आती है, न छाया आता है, बल्कि सब सूख जाता है। मूल से जैसे संबंध है तो हर साल फल आते हैं। कोई जैसे वृक्ष को जड़ से अलग कर दे तो फल आ सकता है, नहीं आ सकता है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, मुर्गी एक न्याय मीमांसक लोग कहते हैं, जैसे मुर्गी एक आदमी रखा था कुरकुट न्याय, तो मुर्गी को भोजन खिलाता था, मुर्गी अंडा देती थी। तो एक दिन सोचा कि मुर्गी का जो मुख है बड़ा खर्चीला है, इसका जो पक्षांग है ये अंडा देता है लेकिन मुख बड़ा खर्चीला है, तो मुंह को काटकर अलग कर दिया। मुंह को अलग कर दिया तो मुर्गी अंडा देना बंद कर दी। जब तक मुख था तो मुर्गी दाना चुंगती थी और अंडा देती थी। ये सिर को अलग कर दीजिए शरीर से तो शरीर जिंदा नहीं रहता है। बिना सिर का कोई आपको दिखाई देता है? बिना सिर का कोई नहीं दिखाई देता है, या बिना सिर वाला व्यक्ति कोई यहां आता भी नहीं है। लेकिन बिना पैर वाले लोग आते हैं, बिना हाथ वाले भी लोग आते हैं। कोई कोई ऐसे लोग हैं जिनका दोनों हाथ कटा हुआ है फिर भी आते हैं, कोई कोई ऐसे लोग भी आते हैं जिनका दोनों पैर नहीं है वो भी आते हैं, चल नहीं पाते हैं तो किसी का सहारा लेकर आते हैं। लेकिन बिना सिर का कोई दिखाई नहीं देता है। बिना सिर वाला अगर कोई आ जाए तो लोग सब भाग जाएंगे कि कोई प्रेत आ गया है। बिना सिर जीवन संभव नहीं है। ये सिर को अलग कर दीजिए तो तुरंत आदमी मर जाता है। लेकिन अन्य अंग को आप अलग कर सकते हैं, पैर को अलग कर सकते हैं, फिर भी आदमी जिंदा रह सकता है। बिना हाथ के भी लोग जिंदा रह सकते हैं, बिना आंख के भी लोग जिंदा रह सकते हैं, बिना कान के भी लोग काम कर लेते हैं, गूंगा आदमी भी काम कर लेता है, लेकिन बिना सिर का संभव नहीं है। जैसे शरीर में सिर जो है प्रधान है, सिर प्रधान है, उसी तरह वृक्ष में जड़ प्रधान है। दिन में सूर्य प्रधान है, रात्रि में चंद्रमा प्रधान है, देवताओं में इंद्र प्रधान है, सृजनकर्ताओं में ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, उसी तरह समस्त लोक में, समस्त ब्रह्मांड में, समस्त काल में, चाहे दिन हो रात है, भगवान प्रधान है। भगवान कृष्ण हर जगह उनकी पूजा होती है, हर देश में, हर काल में, हर ब्रह्मांड में उनकी पूजा होती है, इसलिए सर्वलोक ही महेश्वर। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम में होते हुए भी हर जगह है और हर चीज वो सूंघ लेते हैं, हर चीज स्पर्श कर लेते हैं, हर चीज खा लेते हैं। जैसे सूरज के द्वारा भगवान देख लेते हैं, भगवान बहुत दूर हैं लेकिन उनके नेत्र सूरज भी हैं। इस विराट पुरुष के नेत्र सूरज हैं, सूरज के द्वारा वो सबको देख लेते हैं, सबको प्रकाशित कर देते हैं और सूरज के द्वारा सब कुछ ग्रहण भी कर लेते हैं। भगवान ऐसे भी नेत्र से खाते हैं, भगवान कोई भी चीज आंख से खाते हैं, भगवान मुंह से भी खाते हैं लेकिन आंख से भी खाते हैं। जैसे सूरज के द्वारा भी शोषित कर लेते हैं सब कुछ, जैसे हम बचपन में मां के गर्भ में नाल से खाते थे, नाभि से, मां के गर्भ में जब जीव रहता है तो नाभि से खाता है, बाहर आता है तो मुख से खाना चालू करता है, वृक्ष जो है पैर से खाता है, वृक्ष को पादप कहा जाता है, पाद माने पैर, पादप जो पैर से प्राप्त करता है, वृक्ष को नीचे से ही भोजन मिलता है, जड़ से खाता है वो, इसलिए उसको पादप कहते हैं, जो पाद के द्वारा प्राप्त करता है इसलिए इसका पादप कहा जाता है। और हम मुख से खाते हैं। और कुछ ऐसे जीव हैं जो खाते ही नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे कृमि हैं जो नहीं खाते हैं, बहुत ऐसे कृमि हैं जो अपने चर्म से, अपने शरीर से खाते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो श्वास के द्वारा, केवल श्वास से जीवित रहते हैं, लेकिन भगवान हर तरह से, हर अंगों से खाते हैं। भगवान किसी भी अंग से खा सकते हैं, अंगानिजस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंत, भगवान के किसी किसी अंग से भी, कहीं से भी भोजन दीजिए खा लेते हैं। जैसे गिरिराज लीला में भगवान जब प्रकट हुए तो एक रूप से पूजत है, दूजे रूप पूजा है, सहस्र भुजा पसारी के मांग मांग के, कोई किधर से भी लाता था ले लेते थे, हजार भुजाओं से एक रूप से पूजा कर रहे थे और दूसरे रूप से पूजा ले रहे थे। एक रूप से पूजत है और दूजे रूप पूजा है, सहस्र भुजा पसारी के मांग मांग के खाए। गिरिराज जी में भगवान मांग मांग कर खा रहे थे, आनी ओर माने और लाओ और लाओ, और कोई किधर से भी लाता था उधर से ले लेते थे, सहस्र भुजा व्योम में या हर दिशाओं में उनकी भुजाएं हैं, कोई किधर से भी देगा तो ले सकते हैं, और जितना भी पकवान था सब खा गए, एकाध मन नहीं, जितने ब्रज के पकवान थे सब भगवान खा गए। भगवान सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ हजम कर सकते हैं, इसलिए वो भोक्ता हैं, हम सब कुछ नहीं खा सकते हैं, और खा भी लेंगे तो हजम नहीं होगा, नहीं भगवान सब कुछ खा सकते हैं, सर्वहरस्य हम, भगवान कहते मैं सब कुछ हरण कर लेता हूं, भगवान काल हैं, सब कुछ को ग्रास कर लेते हैं। अगर कोई प्रेम भक्ति से देता है तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, नहीं देता है तो अंत में सब कुछ को ले लेते हैं, सब कुछ हरण कर लेते हैं। अगर कोई प्रेम से भगवान को नहीं देता है, भगवान से प्रतिस्पर्धा करता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं उससे छीन लेता हूं, हरि से तदनम से नहीं। भगवान वो भी भगवान की कृपा है, जीव से ले लेना भी कृपा है, भगवान हर परिस्थिति में जीव पर कृपा ही करते हैं। तो इसलिए भगवान मूल है, देवी देवताओं की उपासना भी उनकी उपासना में हो जाती है। जैसे छोटी छोटी नदियां गंगा जी में मिलकर गंगा हो जाती हैं, बहुत छोटे छोटे नाले हैं वो भी गंगा जी में जाकर गंगा का रूप ले लेते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, शुद्धन्ति, वो भी गंगा जैसी उनकी पूजा होती है। लेकिन अलग रहते हैं तो लोग बोलते हैं नाला है, ये छोटी नदियां हैं, लेकिन जैसे ही गंगा के स्पर्श में वो भी पवित्र हो जाता है। तो भगवान से जैसे जीव का संबंध होता है वो भी पूजनीय हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। चाहे कितना भी किरात हुणान पुलिंद पुलकसा, बहुत निकृष्ट जीव भी भगवान के भक्ति के संपर्क में आता है तो शुद्ध हो जाता है और पूज्य हो जाता है। जैसे हनुमान जी बंदर हैं लेकिन भगवान के भक्ति से पूजनीय हैं, जामवंत जी भालू हैं लेकिन भक्ति के चलते पूजनीय हैं, काक भुसुंडी जी कौवा हैं लेकिन भक्ति के चलते वो पूज्य हैं, गरुड़ जी ये भी गिद्ध हैं मांस खाते हैं लेकिन भक्ति से फिर भी पूज्य हैं, शिव जी हमेशा भस्म लगाते हैं श्मशान में रहते हैं मुंडमाल पहनते हैं अघोर वृत्ति में, लेकिन भगवान के नाम जब से वो मंगलमय हैं। हनुमान जी भी मंगल मूर्ति हैं, गणेश जी भी मंगल मूर्ति हैं। क्यों? कि भगवान के भक्ति के प्रभाव से वो मंगल मूर्ति हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणोध्वज, इसलिए हनुमान जी को भी मंगल मूर्ति कहा जाता है। लाल देह लालील से और उधर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलना, जय 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 कपिशोर। मंगल मूर्ति रूप पवन तने संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप। पवन तने बल पवन समाना, भक्ति से वो पवन के समान द्रुत गति से चलते हैं भक्ति के प्रभाव से। पवन तने संकट हरना, और संकट को भी हर लेते हैं। गणेश जी भी विघ्न हरता है, विघ्न क्यों हरता कहलाते हैं कि भगवान के भक्ति करते हैं। यत्पाद पल्लव जुगम दिनधाय कुंभ, भगवान के चरण कमलों में आश्रित है इसलिए जगत के संकट को दूर कर, भक्ति करने से ही संकट दूर हो जाता है। और जो कोई भक्ति करता है हनुमान जी और गणेश जी जैसा हरनी शिव जी जैसा, तो मंगल मूर्ति हो जाता है, सारे विघ्न को दूर कर देता है, दूसरे को भी विघ्न को दूर करता है। लोग गणेश जी के पास लोग जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं कि हमारा दुख दूर करो, लेकिन यह नहीं जानते हैं कि ये कैसे इनमें शक्ति है। भगवान की भक्ति से भक्ति में शक्ति है। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो हनुमान जी जैसा हो सकता है, गणेश जी जैसा भी हो सकता है। भक्ति करने से वो स्वतः विघ्न दूर हो जाते हैं। भक्ति के ये है क्लेश सदा, क्लेश को दूर कर देता है। कोई भी प्राणी अगर भक्ति करे तो उसके क्लेश दूर हो जाते हैं, उसके अशुभ कर्म जो है भस्म हो जाते हैं। क्लेश साकने उसको कहा गया है, यत सर्व सबको भस्म कर देता है भक्त, भस्म सात कुर्त भक्ति करने से, कि जितने भी लेश अशेष क्लेश नाश आय, अशेष क्लेश को भी। जैसे कहा जाता है नमस्ते गिरिराज आय श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाश आय परमानंद नामिने। गिरिराज जी भगवान के भक्ति से क्या है परमानंद और क्लेश को नाश करते हैं। नमस्ते गिरिराज आय श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाश आय परमानंद नामी, हमेशा परमानंद में रहते हैं, प्रेमानंद में या परमानंद में। क्यों रहते हैं? कि भक्ति से। इसलिए भगवान की भक्ति यथा तरोर मूल है उसमें जल देना चाहिए। जो भी हविष्यान करना है या नाम जप करना है या पूजा करना है या कुछ अर्पण करना है भगवान के लिए करना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की।